प्यार छात्र नमस्कार। जैसा कि दसवीं हिंदी में मैंने पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया था कि बोर्ड द्वारा कुछ व्याकरणिक बिंदु है वो आपके पाठ्यक्रम दिए हैं, जिसमें विशेषण और क्रिया ये दो बिंदु थे। विशेषण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज का जो बिंदु है वो है क्रिया। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्रिया, यानी क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया कितने प्रकार की होती है आदि आदि बातों की चर्चा है वो इस बिंदु में करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की जननी अर्थात माता है वो संस्कृत है, तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा में जिसे आप धातु कहते हैं हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है करना। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, यानी हिंदी में वाक्य रचना के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया का होना अति आवश्यक होता है। इनके बगैर कोई वाक्य है वो पूर्ण नहीं होता, यानी वाक्य की पूर्णता के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों का होना अति आवश्यक होता है। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है, यानी क्रिया के माध्यम से ही हम ये जान सकते हैं कि इसमें कर्ता कौन सा है, काल कौन सा है और कर्म किस प्रकार का है। जैसे हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है और धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं या बन जाते हैं। जैसे पढ़ है वो धातु है और पढ़ के पीछे ना लगा देने से पढ़ना क्रियापद बन गया। उसी प्रकार उठ, तो उठ के पीछे ना लगाने से उठना ये क्रियापद बन गया। इसी प्रकार हंसना, खाना, पीना, रोना, चिल्लाना, उठ बैठना ये सारी क्रियापद है। तो ये तो हुई क्रिया का अर्थ और क्रिया की उत्पत्ति। अब अपन बात करते हैं क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना का बोध हो, या यूं कहें कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। तो क्रिया के भेद तीन आधार पर किए जाते हैं। नंबर एक, कर्म के आधार पर क्रिया, संरचना के आधार पर क्रिया और काल के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और यही बिंदु है वो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रश्न आ सकता है कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लिख सकते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्वि कर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के काफ़ी भेद हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया आदि। और जो तीसरा क्रिया का भेद का आधार है वो है काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो इस प्रकार ये तो वे क्रिया के भेद, यानी क्रिया के भेद तीन आधार पर किए जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया है वो तीन प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। तो इस प्रकार ये वह क्रिया रूप की उत्पत्ति या क्रियापद कैसे बनते हैं, क्रिया का अर्थ क्या है, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। तो वापस आप दोहरा सकते हैं कि क्रिया शब्द का अर्थ है करना, संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं, हिंदी में उस धातु के पीछे ना लगाने से क्रिया पद बन जाता है, जैसे पढ़ धातु है, ना लगने से पढ़ना एक क्रिया हो गई। अब परिभाषा की बात करें तो जिस शब्द से किसी काम का या कार्य का होना या करना पाया जाए या उसका बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद तीन आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है और यही बिंदु मोस्ट है, यानी महत्वपूर्ण है, अकर्मक और सकर्मक। धन्यवाद।